आश्रम धर्म की क्या चर्चा की थी हमने कल, कहां समाप्त किया था चर्चा, कौन से चार्ज से भक्ति का आधार। ठीक है, अब सतो वृत्ति, सतह मतलब साधु जैसे हम देख चुके हैं, वृत्ति मतलब उनकी विचारधारा, उनकी जीवनशीला, जीवन शैली, ये सब वृत्ति है। तो महाजनों ने जैसे जीवन बिताया है तो उस आदर्श को ध्यान में रखते हुए जब हम उनके पद चिन्हों में चलने का प्रयास करते हैं तो इसे सतोवृत्ति कहते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी टीका में चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत के अनेक श्लोकों को लेकर दिखलाया है कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के चरित्र और जीवनी से ये सारे वैष्णव वृत्ति या वैष्णव व्यवहार और जीवन शैली की बातें कैसे प्रकट होती हैं। तो महाप्रभु और उनके भक्तों की लीला और उनके उपदेशों को सामने रख के भक्ति विनोद ठाकुर कई ऐसे वैष्णव आचार के बातें बताते हैं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो वो वर्णों का वर्णन करते हैं कि वर्णों के हिसाब से क्या क्या कार्य होने चाहिए, फिर आश्रमों के आधार पर क्या कार्य होने चाहिए, और फिर कहते हैं गृहस्थ वैष्णवों को कैसे रहना चाहिए। सतोवृत्ति चैतन्य महाप्रभु के लीला में ऐसे कई वैष्णव थे जो गृहस्थ थे। आप उदाहरण दीजिए कौन कौन से। श्रीवास ठाकुर, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, क्या वो तो थोड़े अवधूत थे नित्यानंद प्रभु, हाँ, शिवानंद सेन, और ऐसे अनेक थे। तो इनका उदाहरण रख के भक्ति विनोद ठाकुर ने अनेक पॉइंट दिए हैं। हमने सार रूप में उनको रखने के लिए प्रस्तुत किया है लेकिन अभी तक वो लिखे जा रहे हैं और इतनी लंबी लिस्ट है कि आप लिखते जाएंगे तो सारा क्लास बीत जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि ये लिस्ट जो हम लिखने जा रहे हैं उसको आप कभी दूसरे समय लिख लीजिए ताकि क्लास का समय उसमें नहीं जाए, क्योंकि वो केवल लिस्ट है। तो केवल मैं बैठ के पढ़ूंगा और आप लिखेंगे तो इसमें क्लास का समय जाएगा, है ना। तो ये लिस्ट आपको अलग से यहां रखा जाएगा, ये आपके केवल ख्याल में रखिए कि ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है गृहस्थ वैष्णवों के लिए और विरक्त वैष्णवों के लिए। उन्होंने अलग अलग नियम बताए हैं चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत से, क्योंकि सतोवृत्ति की बात हो रही है ना। और फिर वो कहते हैं कि दोनों गृहस्थ और विरक्त वैष्णवों को समान रूप से कौन से नियम का पालन करना चाहिए, उनका भी लिस्ट दिया है उन्होंने, लंबा लिस्ट। तो ये काफी लंबा हो जाता है, इसलिए ये बाद में हम देखेंगे। तो लिस्ट छोड़कर वो जो पहले था वो वाला आप रख लेना। केवल लिखना है तो इसलिए पढ़ना शब्द अच्छा, तो उसके बाद तो ये वृत्ति रहने देंगे, कंप्लीट हो गया अच्छा। तो आदर्श गृहस्थ और विरक्त दोनों का कंप्लीट है ना, ये सब एक साथ में करेंगे तो लिखने के लिए। तो अभी आगे हम पढ़ते हैं सतोवृत्ति के बाद यदि यदि कोई इस श्लोक में यहां से शुरू होता है कौन आज कौन पढ़ेंगे जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है कौन पढ़ेंगे आज ठीक
यदि कोई इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का साई होना दृढ़ नशयी होना अवांछित व्यक्तियों की संगत का परित्याग करना नियमों का पालन तथा भक्तों की संगत करना कड़ाई से पालन करता है तो वो भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। इस संबंध में श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों की इच्छा ये सब भक्ति के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। मनुष्य को इस स्थायी कार्यकलापों के प्रति निश्चेष रहना रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर होना है। भगवत गीता के अनुसार 269 या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मनः। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वो आत्मसंयमी के लिए जगने का समय है और जो समस्त प्राणियों के जगने का समय है वो अंतर्दृष्टा के लिए रात्रि है।
ठीक है तो यहां श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहां इस श्लोक में तीसरे श्लोक में जो सलाह श्रील रूप गोस्वामी ने हमें दी है तो इन छह चीजों का पालन हम करेंगे तो क्या होगा तो भक्ति में अवश्य प्रगति हम करेंगे निश्चित ही। इसलिए भक्त को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वो छह नियमों का पालन अच्छी तरह से करे। और फिर आगे चल के प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णतया उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना चाहिए। उदासीन होना चाहिए क्षणिक चीजों के बारे में, अपना ध्यान पूरा भक्ति की ओर मोड़ लेना चाहिए। जानना चाहिए कि यही एकमात्र मूल्यवान चीज है, प्राप्त करने योग्य वस्तु है इस जगत में। और ये श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, आपने पढ़ा होगा गीता के दौरान, गीता पढ़ते समय। इसका तात्पर्य कौन समझाएंगे? गीता की परीक्षा हो गई ना, कौन समझाएंगे? ज्ञान निशा सर्वभूतानां अर्थात तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है इसका? ये रात है और दिन है, उनके लिए जो रात है इनके लिए ये दिन है।
अर्थात उस समय जो वो लोग सोते हैं उस समय आत्मसंयम पुरुष कार्यरत रहता है, अध्यात्म कार्य में लगे
रहते। मतलब केवल घड़ी की बात है कि जब उनका दिन है उनका ये है। लंदन में जब हम गए थे वहां, जो लंदन में हमारा मंदिर है बहुत छोटा मंदिर है लेकिन बीच लंदन शहर में है, बहुत ही महंगा है सब कुछ वहां पर, इतना महंगा हर स्क्वायर फुट में हजारों पाउंड की कीमत है। तो वहां एक दिन जब हम मंगल आरती के लिए गए थे 4:15 बजे थे तो सुबह, तो वहां पास में हमने देखा कि कई नौजवान और नवयुवतियां, मतलब भक्त नहीं थे लेकिन खड़े थे बातें कर रहे थे। तो हमने भक्त से कहा जो हमारे साथ में चल रहे थे, अरे ये लोग इतने जल्दी उठ गए, 4 बजे लोग उठ जाते हैं, यहां भी बहुत अच्छी बात है इनके लिए। कहा नहीं नहीं उठे नहीं, अब सोने जा रहे हैं। वो कोई क्लब था तो रात भर वहां क्लब में उनका कुछ पार्टी चलता था, और पार्टी समाप्त हो गई 4:30-4:30 बजे, तो भक्तों के जगने का समय उनके सोने का समय हो गया। तो जब भक्त लोग सो रहे थे वो लोग जागे हुए थे, और जब भक्त लोग जागे तो वो सोने चले गए। तो ये आप बोल रहे हो ये एक अर्थ है, ये एक प्रकार, लेकिन मूल तात्पर्य और है। ये भी सही है जो समय की बात कर रहे हैं, घड़ी के समय की बात कर रहे हैं, रात और दिन की बात, कब वो सोने जाएंगे उठने जाएंगे, ये भी ठीक है। परंतु तात्पर्य इस प्रकार से है, रात में हम लोग क्या करते हैं, सोते हैं। तो जब सोते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई कार्य नहीं करते। दिन के समय हम क्रियाशील हो जाते हैं, है ना, बड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो जब ये कहा गया है या निशा सर्वभूतानाम, कि सारे अन्य मनुष्यों के लिए जो रात्रि है, अर्थात वो कार्य हैं जो कि वो नहीं करते हैं बिल्कुल, जिनमें वो लोग रुचि नहीं लेते हैं, रात्रि का समय है निष्क्रियता। तो जिन कार्यों में साधारण लोग बिल्कुल रुचि नहीं लेते उनके लिए रात है, तो फिर तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी लोग हैं उनके लिए ये कार्य दिन है, अर्थात इन कार्यों को वो करते हैं, वो ऐसे क्षेत्र में क्रियाशील रहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्रों में। तो आध्यात्मिक कार्य ये साधारण व्यक्तियों के लिए रात है, क्योंकि इस क्षेत्र में उनका कोई काम ही नहीं है, वो सोए हुए रहते हैं। लेकिन संयमी लोग बहुत क्रियाशील होते हैं। और फिर आगे क्या है, यस्याम जागृति भूतानि, तो जिस समय जागृत होते हैं सारे साधारण लोग, जो उनका दिन होता है, अर्थात जिस समय वो क्रियाशील रहते हैं या जिन कार्यों में वो बहुत रुचि लेते हैं, वो भोग है, उसके लिए क्या है, सा निशा पश्यतो मुने है। तो ये जो कार्य हैं, भोग के कार्य हैं, इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं, ये आत्मसंयमी लोगों के लिए, मुनियों के लिए रात है, ऐसे कार्यों में वो बिल्कुल रुचि नहीं लेते हैं। तो दोनों की दुनिया अलग अलग है, एक की दुनिया भोग की दुनिया है, दूसरों की दुनिया आध्यात्मिक जीवन की दुनिया है। तो प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कह रहे हैं कि हमें भोग की दुनिया से बिल्कुल उदासीन होना चाहिए, जो भी क्षणिक है उस सबसे दूर रहना चाहिए, और दृढ़ता पूर्वक भक्ति हमें करनी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए।
भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव की आत्मा है, यह वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त होना चाहिए और उसे ये विश्वास रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप तथा मानसिक चिंतन, सकाम कर्म या यौगिक प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं। भक्त के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से ही वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अन्य मार्गों का अनुसरण करने से मनुष्य शांत ही होगा।
हाँ, तो देखिए फिर से यहाँ निश्चय, निश्चय की बात फिर से यहाँ श्री प्रभुपाद जी कर रहे हैं। छह गुणों का वर्णन तो कर लिया है प्रभुपाद जी ने, अब फिर से निश्चय का एक और तात्पर्य दे रहे हैं। निश्चय शब्द हमने विश्वास या श्रद्धा से जोड़ दिया था, है ना? निश्चय और विश्वास ये दोनों चीजें जुड़े हुए हैं, श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। तो किस चीज में श्रद्धा होनी चाहिए? निश्चय मतलब किस चीज में श्रद्धा? भक्ति मार्ग में श्रद्धा। क्या श्रद्धा होनी चाहिए कि भक्ति मार्ग का पालन करने से, भक्ति मार्ग में चलने से हमारी जीवन की सफलता प्राप्त हो जाएगी, यह है श्रद्धा। परंतु निश्चय या श्रद्धा इसका और इसकी और एक शाखा है जिसका वर्णन यहां पर प्रभुपाद जी ने किया है। क्या है वो शाखा? केवल इतनी श्रद्धा, इतना श्रद्धा होना कि भक्ति स्वीकार करने से जीवन परिपूर्ण होगा उतना काफी नहीं है।
कुछ निषेध भी बताएं कि मानसिक चिंतन नहीं करना चाहिए।
हाँ, तो क्या नहीं, ये कार्य अन्य कार्य करने से सफलता कभी नहीं प्राप्त हो सकती, ये भी श्रद्धा होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? केवल इतना काफी नहीं है कि हम भक्ति में श्रद्धा रखें कि भक्ति का पालन करने से जीवन हम जीवन में सफल हो जाएंगे, ये भी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि भक्ति के अलावा कोई भी दूसरा पथ हमें सफलता तक नहीं पहुंचा सकता है। कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो। कौन समझाएंगे आप इन दो प्रकार की श्रद्धाओं को, ये दो प्रकार के निश्चय को कौन बताएंगे? अभी अभी जो हमने बात कही बताइए।
जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं तो विधि है और एक विषय, जैसे बताया इसमें हमारे भक्ति मार्ग में चलने में हमें अपनी श्रद्धा और विश्वास रखना ही चाहिए। उसके साथ साथ हमको कुछ चीजें,
क्या श्रद्धा होनी चाहिए?
श्रद्धा होनी चाहिए कि हमको इसी मार्ग से ही भगवान की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी,
इस मार्ग से होगी अवश्य सफलता प्राप्त होगी।
विश्वास होना चाहिए और दूसरा ये भी विश्वास होना चाहिए कि हमको मानसिक चिंतन करने से भगवान प्राप्त नहीं होंगे, सकाम कर्म करने से नहीं प्राप्त हो सकेगी, या योगिक प्रयास से भी हमको, ये भी हमको विश्वास होना चाहिए कि इन मार्गों से भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते।
इन मार्गों से अर्थात भक्ति के सिवाय किसी भी अन्य मार्ग से हमें सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये निश्चय है, नहीं तो क्या होगा? जैसे भारत में सब खिचड़ी है लोगों के मन में, हाँ ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ऐसे कई लोगों को आप मिलेंगे, अच्छा भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा, भक्ति की प्रशंसा करते हैं लेकिन अन्य मार्गों की भी प्रशंसा करते हैं, कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जब भक्ति मार्ग पकड़ा हुआ है, भक्ति मार्ग के बारे में हम जाने हैं, तो बस यही एकमात्र मार्ग है, अन्य मार्ग असमर्थ हैं। अच्छा, तो इसकी पुष्टि अभी प्रभुपाद जी आगे करेंगे श्रीमद् भागवत के प्रमाण देकर। तो पढ़िएगा।
मनुष्य को बड़ी बार आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों के ने अन्य प्रयोजनों से कठिन तपस्या के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे लाख उच्चतर तपस्याएं करें लेकिन उन्हें उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेरणा भक्ति के विषय में कोई सूचना नहीं रहती। सप्तम स्कंध में ही आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतक, ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ले, फिर भी वे पतित होते हैं क्योंकि उन्हें भगवान के जन्म कमलों के विषय में कोई सूचना नहीं रहती।
हाँ, तो यहाँ बताया जा रहा है कि अन्य मार्ग के जो साधक हैं उनको सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती? ठीक है, हमें श्रद्धा है कि अन्य मार्गों से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन क्यों नहीं हो सकती? भगवान के चरण कमलों का ज्ञान नहीं है, भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति नहीं है, इसीलिए वो स्थिर नहीं रह सकते अपने पथ में, उनका पतन वो न होकर ही रहेगा, आज नहीं तो कल। ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना, कौन सा प्रसिद्ध श्लोक है ब्रह्मा जी का, कौन बताएंगे? नहीं, ये रविन्दाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम पतः पतंत्यदो नाद्रित युष्मदंघ्रयः। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये, प्रभुपाद जी बार बार इसको तो इसको कहा करते थे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को छोड़कर कोई दूसरा पथ स्वीकार करते हैं, ये अन्य, जो लोग अन्य पथ को स्वीकार करते हैं, हे कमल नयन श्री कृष्ण, और अपने आप को बहुत शुद्ध मानते हैं, तो यस्त भावात अविशुद्ध बुद्धयः, लेकिन उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती वास्तव में, विमुक्त मानिनः, वो अपने आप को मुक्त मानते हैं परंतु मुक्त नहीं है, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत कष्ट अपने आप को देते हैं और सोचते हैं कि मैं परम पद को प्राप्त हो चुका, परंतु पतन्ति अधः, परंतु उनका पतन हो जाता है। क्यों? अनाद्रत युष्मत अंग्रयः, कि आपके चरण कमलों का अनादर उन्होंने किया है, इसलिए भले वो ब्रह्मलोक तक ये निराकार ब्रह्म को भी पहुंच जाएं, फिर भी वहां से उनका पतन होगा, आज नहीं तो कल। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना ही ये एक चिरकाल का, ये समझ लीजिए अनंत काल तक का, ये हमारे लिए जीवन बीमा है, इंश्योरेंस पॉलिसी, कि कभी कुछ नहीं होगा, ये स्थिर हम हमेशा के लिए वहां पर रह पाएंगे। अन्य कोई भी पथ ऐसे शाश्वत जीवन हमें प्रदान नहीं कर सकता। नहीं नहीं, भागवत जो हमने कहा श्लोक वो दशम स्कंद से है, ब्रह्मा जी का श्लोक है, ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। उसी प्रकार से सातवें स्कंद के दो श्लोकों का अनुवाद श्री प्रभुपाद जी ने यहां इस तात्पर्य में दिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान के चरण कमलों को का आश्रय लेना चाहिए, और क्योंकि भक्त ऐसे आश्रय लेते हैं तो उनकी क्या दशा होती है, आइए पढ़ते हैं।
भगवद्गीता
नहीं, नहीं, अच्छा ठीक है, भगवान
तो भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता। भगवद्गीता 9:31 में भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, कौन थे जानी नमे वक्ता विनष्ट की, एक उनकी पुत्र मेरा रोकर घोषित कर दो, मेरे मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। पुनः भगवद्गीता 2:40 में कृष्ण कहते हैं, न्याय विक्रम नाशो अस्थि दत्त भाव स्वर्गवास धर्म से दायित्व महत्व होता है। इस प्रयास का ना विनाश होता है ना इसमें कमी आती है, इस पद पर थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य की भयंकर से भयंकर वैसे रक्षा कर सकती है।
हाँ, तो अन्य जितने भी पद के साधक हैं उनका पतन होगा, परंतु भक्त का पतन कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा अर्थात जब वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है उसके बाद है। उसके पहले तो हो सकता है, परंतु उसके बाद शुद्ध भक्त का पतन नहीं हो सकता। हाँ, नाश नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसका इसका क्या मतलब है? नाश नहीं होगा मतलब क्या, शरीर का नाश नहीं होगा? इसका इसका मतलब यह है, त्रायते महतो भयात, मतलब सबसे बड़े भय से वो बच जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान उसके शरीर की रक्षा हर समय करेंगे, क्योंकि मृत्यु तो होनी है, परंतु भगवान उसकी चेतना की रक्षा करेंगे। अर्थात अगर उसने यहां 50% कृष्ण भावना का अनुशीलन किया है इस जन्म में और उसकी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में 50% से ही वो शुरू करेगा आगे। तो वो 50% जो उसने अपने आध्यात्मिक बैंक में जमाया था वो खोएगा नहीं वो। लेकिन हमारे भौतिक धन के साथ ऐसा नहीं होता है। आज हमने स्टेट बैंक में 10 लाख रुपए रखे और अगले जन्म में हमारे खाते में 10 लाख होनी चाहिए, आवश्यक नहीं है। हो सकता है हम बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लें, हो सकता है हम पशु बन जाएं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के साथ ऐसा नहीं है। तो इस रक्षा की बात कर रहे हैं। तो ऐसे भी बीच बीच में पतन हो सकता है भक्त का, लेकिन पतन होगा फिर भी वो आध्यात्मिक धन खोएगा नहीं वो भक्त, इसलिए आगे 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 जाएगा वो। और इसी बारे में यहां अगले परिच्छेद में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर वाक्य है इस परिच्छेद का पहला वाक्य, इसको जरा ध्यान से आप सुनिएगा। हाँ पढ़िए।
भक्ति इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य बलात् चरम सफलता की ओर खींचता चला जाता है।
चरम सफलता की ओर खींचता चले जाता है। मतलब भगवान खींच खींच के उसको ले जाते हैं। अरे कहां जाओगे, चलो चलो चलो, नहीं नहीं नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कभी घर नहीं आता है, फिर माता पिता उसको पकड़, चलो चलो तुरंत चलो, नहीं नहीं, रोता है, हाथ पैर फैलाता है, लात मारता है, मुक्का प्रहार करता है, लेकिन किसी तरह से पकड़ के ले जाते हैं। उसी प्रकार से एक बार हम भक्ति में आ गए तो भगवान खींच के ले जाते हैं। इसलिए लेकिन मायावादियों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मायावादी लोग शिखा रखते नहीं है, हम लोग शिखा रखते हैं, कुछ खींचने के लिए कोई है भगवान का, चलो 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 चलो। इतनी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं, ये है इसका मतलब कि जब भक्त का कभी नाश नहीं होगा, इसका तात्पर्य यह है कि आज नहीं तो कल वो भक्त शुद्ध भक्त बन ही जाएगा और भगवान के धाम में अवश्य चले जाएगा। केवल समय की बात है, चाहे वो एक जन्म हो, पांच जन्म हो, दस जन्म लगे, अधिक लगे, कोई बात नहीं, थोड़े समय की बस बात है। हाँ तो आगे पढ़िए।
कभी कभी अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भावावेश में परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है और इस तरह वो भक्ति की शुरुआत कर देता है। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ होता है जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। पतित भ्रष्ट भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों ना हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से प्रारंभ होती है जहां उसने छोड़ी थी। भक्ति अयोग्य प्रतिहेता है, यह ना तो किसी संसारी कारण का फल है, न इसे किसी संसारी कारण से समाप्त किया जा सकता है, न ही किसी भौतिक अवरोध से इसे स्थायी रूप से कम किया जा सकता है।
बहुत अच्छा, इस वाक्य को फिर से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा, इसको अपने खाते में आप लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए।
यह न तो किसी संसारी कारण का फल है, न इसे किसी संसारी कारण से समाप्त किया जा सकता है, न ही किसी भौतिक अवरोध से इसे स्थायी रूप से कम किया जा सकता है।
फिर से पढ़िए,
यह
मतलब क्या?
यह मतलब कि भक्ति हमने जो की है,
तो पूरा वाक्य पढ़ लीजिए।
भक्ति जो है, भक्ति जो है, यह न तो किसी संसारी कारण का फल है,
यह न तो कोई संसारी कारण का फल है, अर्थात भक्ति का कारण भक्ति ही है, भक्ति का कारण भक्तों का संग है, भक्ति का कारण कोई भौतिक वस्तु नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात,
न इसे किसी संसारी कारण से समाप्त किया जा सकता
है, न इसे कोई संसारी कारण से समाप्त किया जा सकता है। कितने भी समस्या हो, आदमी कितना भी बड़ा पापी भी हो जाए, सबसे बड़ा पापी हो जाए, फिर भी क्या उसकी भक्ति नष्ट हो सकती है? पाप भौतिक है या आध्यात्मिक? भौतिक है, और भक्ति क्या है? अध्यात्मिक। तो पाप करने से भक्ति नष्ट हो सकती है, तो फिर हम क्यों ना पाप करें? बताइए। आप कहते हैं भक्ति नष्ट नहीं होती पाप करने से, तो फिर पाप क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, ये बात है, ये बात है कि इसलिए भक्ति में हम आगे नहीं बढ़े, बाधक बन जाता है। परंतु आगे पढ़ी उसी वाक्य में अंतिम भाग क्या है? भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम किया जा सकता है। स्थायी रूप बहुत जरूरी है, परमानेंटली आपको रोका नहीं जा सकता पाप करने से भी। अगर आप पाप भी करें तो केवल थोड़े समय के लिए आपको ये रोक देगा, लेकिन अंततः भक्ति आपको खींच के ले जाएगी। ये बात ये है कि ये थोड़ा समय मतलब कितना समय? एक आध जन्म हो जाएंगे बस, इसलिए हमें समय क्यों गंवाना है? इसलिए हम पाप नहीं करते।
इसलिए
हाँ ठीक है, आगे पढ़िए।
अतएव भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकलापों से अत्यधिक में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए।
तो इस प्रकार से भक्ति में सफलता निश्चित है और अन्य मार्गों में सफलता असफलता निश्चित है। बताइए,
भक्ति कार्य में सफलता निश्चित है, अन्य कार्यों में असफलता है।
तो भक्ति कार्यों में मुझे समय नहीं मिला तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप चार्ट पे लिख सकते थे, लेकिन समय नहीं मिला तो आप लिख लीजिए अपने खाता में। भक्ति मार्ग में सफलता निश्चित है, अन्य मार्गों में असफलता निश्चित है। जब तक कि वो भक्ति से पथ नहीं जोड़ा जाता, जब तक व्यक्ति भक्ति पथ में नहीं आता, उस पथ से व्यक्ति को वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। और ये जो पहले इस अध्याय में जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि अपरिपक्व भक्त का पतन हो भी जाए फिर भी कोई नुकसान नहीं है, तो ये कौन सा श्लोक है? श्रीमद् भागवत का बहुत प्रसिद्ध श्लोक, भागवत का। नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव जी से, ये सारा प्राय सभी पूरा अनुवाद इसमें है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूतमुष्य किं को वार्थ आप्तुम् अभजतां स्वधर्मतः। इसमें नारद जी व्यासदेव जी से कहते हैं, अगर किसी ने अपने स्वधर्म को त्याग दिया, मतलब वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को त्याग दिया, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, श्री हरि के चरणों को प्राप्त करने के लिए, परंतु भजन अपक्व, भजन में कच्चा है वो, पते ततो यदि, भजन में कच्चा होने की वजह से यदि उसकी पतन हो, यदि उसका पतन हो जाए, फिर भी क्या नुकसान हुआ? उसके विपरीत को वा अभजताम सुधर्मतः, कि जिसने जो अभजताम जो भगवान का भक्त नहीं है, को वार्थ आप तुम, उसने क्या लाभ पाया, उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इसी बात को यहां प्रभुपाद जी ने कहा है कि भक्ति करने से फायदा ही फायदा है और अन्य जितने भी पथ हैं उनको करने से ऐसे लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इस तात्पर्य की शुद्ध, जब से हमने पढ़ना शुरू किया आज, हमने ये देखा कि सबसे पहली बात प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमें इन छह गुणों का अनुशीलन करना चाहिए जिससे कि प्रगति भक्ति में निश्चित है। हमें क्षणिक भौतिक कार्यों से उदासीन होना चाहिए, हमें निश्चय ये तो होना चाहिए कि भक्ति से हम सफल हो जाएंगे, परंतु इतनी ही श्रद्धा हमें इस बात में भी होनी चाहिए कि भक्ति के अलावा अन्य पथों को स्वीकार करके हम सफलता कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और अन्य पथों में हम सफलता इसलिए नहीं प्राप्त कर पाएंगे कि हमने हमारे अंदर भगवान के चरण कमलों का ज्ञान नहीं है, परंतु भक्तों के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया हुआ है, इसलिए स्थायी रूप से उनका पतन नहीं हो सकता, स्थायी रूप से वो असफल नहीं रह सकते। यदि उनका पतन हो भी जाए फिर भी थोड़े समय बाद वो सफलता की ओर अग्रसर होते रहेंगे और भक्ति मार्ग ऐसी है कि भक्त को खींच कर ले जाएगी अंतिम सफलता की ओर। और ऐसे भक्ति मार्ग में कोई भी स्थायी रूप से रुकावट नहीं है और ये हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। और फिर भक्ति की व्याख्या करते हैं भक्तों का गुणगान करके। तो आगे पढ़िए क्या गुणगान है।
संदेश काम कर्मियों ज्ञानियों तथा योगियों के अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित होते हैं। इसके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना होगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत 5:12 में पुष्ट की गई है, जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं लेता, अतः वो भौतिक दृष्टि से कर्मश ग्रस्त नहीं होता। वो तुरंत दिव्य जीवन के स्तर तक उठ जाता है। किंतु जो व्यक्ति संसारी प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वो ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ, यह महात्मा के उच्च पद तक नहीं उठ सकता। वो दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। भगवद्गीता टेंशन न देगा।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति भक्ति का गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं भक्ति इतना इतनी सुंदर है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके अंदर सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, परंतु जितने दूसरे मार्ग हैं उनमें उनकी जो पथ के साधक हैं उनके अंदर ऐसे गुण नहीं आते। जो भी देवताओं के अंदर गुण होते हैं वो भक्त के अंदर भी विकसित हो जाते हैं, और भक्त कभी भी प्रदूषित नहीं होता है, उसका चित्त शुद्ध ही रहता है। तो ये कौन सा श्लोक है? पूर्ण श्लोक। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लिया है उसके अंदर ये सारे अच्छे गुण स्वतः ही स्वयं ही स्फूर्त हो जाते हैं, परंतु जो भौतिक लोग होते हैं, जो अपने मन के रथ के ऊपर सवार होकर इधर उधर विषय भोग के पीछे भागते हैं, उनके अंदर कौन से अच्छे गुण आ सकते हैं। हाँ, तो ये लोग महात्मा कहलाते हैं, जो महात्मा नहीं है वो दुरात्मा है। हाँ कहिए, आप पढ़िए।
हे तथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी परमेश्वर के रूप में जानते हैं।
अच्छा, आगे पढ़िए।
क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतः उन्हें भक्ति के मार्ग से विचलित होकर कर्मी ज्ञानी या योगी के पद को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये उत्साहन निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तना अर्थात धैर्य तथा विश्वास समेत भक्ति के नियमों को उत्साहपूर्वक संपादित करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना विज्ञान की भक्ति में प्रगति कर सकता है।
तो भक्तों को भक्ति पद से क्यों नहीं हटना चाहिए? नहीं, यहाँ क्या अभी अभी पढ़ाना, क्यों नहीं हटना चाहिए? पढ़िए उस परिच्छेद का पहला वाक्य कौन सा है।
क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं।
हाँ, क्योंकि भगवान के भक्त उनकी दिव्य शक्ति अंतरंगा शक्ति के अधीन रहते हैं, उनके संरक्षण में रहते हैं, इसलिए उनको कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सफलता निश्चित है। लेकिन अन्य पथ के साधक वो श्रीमती राधा रानी के संरक्षण में नहीं होते हैं। तो इसके साथ ये तीसरा श्लोक समाप्त हुआ। इसकी चर्चा भी यहां समाप्त करते हैं, बल्कि बाद में केवल आपको लिखना होगा थोड़ा कुछ, वो आपको बाद में यहां लगा देंगे। तो किसी से किसी को कोई प्रश्न है या टीका? ठीक है, तो चौथा श्लोक शुरू कर लेते हैं। हाँ,
इस बात को याद करके एक
हाँ, ये भक्तों को चाहिए। और ये अगले श्लोक में हम देखेंगे कि छह लक्षण प्रीति के लक्षण जो है भक्तों में, इनमें तो यही है गुह्यम आख्याति प्रच्छति में ही आ जाता है। और तात्पर्य में इस बात को भी प्रभुपाद कहने वाले हैं आने वाले श्लोक में। तो ठीक है, अब चौथे श्लोक को पढ़ते हैं। ये भी अनुष्टुप छंद में है। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते एव षट्विधं प्रीति लक्षणं ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। पढ़िएगा। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। माताजी, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति दान देता है, प्रतिगृहणाति बदले में स्वीकार करता है, गुह्यम गोपनीय विषय, आख्याति बताता है, पृच्छति पूछता है, भुङ्क्ते खाता है, भोजयते खिलाता है, च भी एव निश्चय ही षट विधम छह प्रकार के प्रीति प्रेम लक्षणम लक्षण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना भक्तों के आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं।
तात्पर्य इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ये बताते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगत में भक्ति कार्यो को करना चाहिए। ये कार्य 6 प्रकार के हैं। भक्तों को दान देना, नंबर 2 बदले में भक्तगण जो अर्पित करें उसे स्वीकार करना, नंबर 3 भक्तों से अपने मन की बात कहना, नंबर 4 उनसे भगवान की गुरु सेवा के विषय में प्रश्न पूछना, नंबर 5 भक्तों द्वारा किए गए प्रसाद का सम्मान करना तथा नंबर 6 भक्तों को प्रसाद खिलाना। इस तरह एक अनुभवी भक्त बताता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है, यही विवेक अभ्यास की क्षति है। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुभ भक्तों के माध्यम से प्राप्त होने वाली भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें प्रसाद भेंट करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भूलते भूलते चेक कराता है।
हाँ, तो इस पहले परिच्छेद में श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 6 लक्षण क्या है, संक्षिप्त में इनका वर्णन करते हैं। तो ददाति प्रतिगृणाति क्या है? भक्तों को दान देना, दान लेना, लेकिन दान क्या चीज है ये आगे चल के प्रभुपाद जी बताने वाले हैं। और गुह्यम आख्याति पृच्छति के बारे में क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? हाँ, क्या विशेष करके क्या बताया है?
अपने जो भक्ति संबंधित प्रश्न है उनको पूछना।
किन किन को पूछना?
भक्तों से।
किन भक्तों को?
अनुभवी भक्त है अनुभवी भक्त को बोलना चाहिए, अनुभवहीन है उसको सुनना चाहिए।
हाँ, ये बात है। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखते हैं, यह गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाता है। अर्थात गुह्यम आख्याति पृच्छति का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम ऐसे कोई गोपनीय बात कहें जो हम किसी अन्य को नहीं बता सकते, वो तो है ही, साथ साथ ये कृष्ण भक्ति की बातें ये भी तो गोपनीय हैं, सभी लोग नहीं समझ रहे हैं। तो जब कृष्ण भक्ति की बातचीत होती है भक्तों के बीच में तो ये भी तो गुह्यम आख्याति पृच्छति है। हाँ, आगे पढ़िए। अच्छा, यहाँ आने वाले परिच्छेद में बताया जाएगा कि ये 6 लक्षण साधारण सामाजिक व्यवहार में भी देखे जाते हैं। किस प्रकार से देखे जाते हैं यहाँ पर वर्णन श्री प्रभुपाद कर रहे हैं।
यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच में ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वो किसी होटल में भोज का आयोजन करता है और उस भोज में वो खुलकर व्यक्त करता है कि वो क्या करना चाहता है। तब वो अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है मनुष्य को संसारी संगत छोड़कर भक्तों की संगत करनी चाहिए। संग त्यागार सतो बेहतर।
तो यहाँ बताया है कि संसार में भी 6 लक्षण देखे जाते हैं। 2 व्यापारियों के बीच में ये संबंध देखे जाते हैं, होटल में जाके खिलाता पिलाता है उसे, है ना। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी हमें याद दिला रहे हैं संग त्यागात सतोवृत्ते कि हमें अभक्तों का संग इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और हमने सुना है सतोवृत्ते का तात्पर्य ये है, या संग त्यागात का तात्पर्य ये है श्री भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा कि ये 6 कार्य प्रेम पूर्वक अभक्तों के साथ हमें नहीं करने चाहिए। तो फिर किन के साथ करने चाहिए? इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैंने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की जिससे कि लोगों को अवसर मिले कि वह भक्तों के साथ प्रेम के ये छह लक्षण या इन छह चिन्हों का आदान प्रदान करें। तो पढ़िए।
अंतर्राष्ट्रीय पुष्पावनावत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन छह प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। यह संघ एक व्यक्ति द्वारा चालू किया गया।
फिर से बताइए, इस कौन संस्था का उद्देश्य इस एक वाक्य में है? इसे मार्क कीजिए अपने किताब में। इस कौन संस्था की स्थापना क्यों हुई? पुनः पढ़िए।
अंतर्राष्ट्रीय विश्वभावनावत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन छह प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई।
झगड़े के लिए नहीं, और किसी चीज के लिए
नहीं।
हाँ, आगे।
यह संघ एक व्यक्ति द्वारा चालू किया गया था, किंतु जो भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतः यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं, और बदले में हम कुछ भावनावृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें भी उत्साहपूर्वक ग्रहण कर रहे हैं।
ददाती प्रतिगृहणाती, लोग क्या देते हैं?
दान
देते हैं। और हम लोग क्या देते हैं? पुस्तकें देते हैं। ददाती प्रतिगृहणाती। हाँ, आगे।
कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, तो भी वे बुलाने पर आते हैं और हम उन्हें जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वो ग्रहण करते हैं।
घूमते भोजयते चैव, किस प्रकार से होता है?
हमारे जो आजीवन सदस्य हैं और जो गेस्ट हैं वो हमारे आते हैं और हमको जो भी प्रसाद देते हैं वो उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। तो इसमें वो नहीं आई, एक हमारे यहाँ तो आते हैं लेकिन क्या
वो आएगा बाद में।
कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं तो उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है।
तो ये क्या है? गुह्यम आख्याति पृच्छति, ठीक है।
और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना वाले कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। कृष्ण भावना में संघ का जीवन सदस्यों के मध्य छह प्रकार के प्रेम में विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। अतः लोगों को स्पॉन के भक्तों से संगत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन छह विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त भावना को जागृत कर सकता है।
ये भी वाक्य दोबारा पढ़िए और उसको मार्क करिए अपने किताब में।
अतः लोगों को स्पॉन के भक्तों की संगत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन छह विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान से सामान्य व्यक्ति
ठीक है।
भगवत गीता 2:62 में कहा गया है, संगात सज्जायते कामा, मनुष्य जैसी संगत करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं और मात्रक आकांक्षाएं विकसित होती हैं। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगत से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगत करता है तो वो निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। कृष्ण भावना की समझ हर जीव में जन्मजात है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से ही विकसित हुई रहती है। चेतन चेतामृत मध्य 22:107 में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध प्रभु ने श्रवणादि शुद्ध चित्त कराए।
अच्छा, एक मिनट, तो इसके पहले प्रभुपाद बता चुके हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि इस कौन संस्था में इन छह प्रेम के लक्षणों का आदान प्रदान कैसे होता है, और फिर बाद में बताते हैं कि लोगों को इस कौन में क्यों आना चाहिए। इन प्रेम के छह आदान प्रदान के जो लक्षण हैं उनको करके वो क्या कर सकते हैं? अपने सुप्त कृष्ण भावना को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि संघ के माध्यम से हमारी इच्छाएं हमारी कामनाएं वैसी होंगी। और ये कैसे विकसित की जा सकती है किसी व्यक्ति के हृदय में, क्योंकि ये पहले से हृदय में है। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस श्लोक को पुनः पढ़िएगा।
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुन है, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित है, जो किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है, क्योंकि कृष्ण भावना हर जीव के अंतर्निहित है। अतः हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षता शुद्ध हो जाता है और उसकी आत्म कृष्ण भावना तुरंत जागरूक हो उठती है। ये पहले ही कहा जा चुका है कि कृष्ण भावना में कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है। यदि वो परमेश्वर के पवित्र नाम पर कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कर्मों से स्वच्छ हो जाता है।
हाँ, तो यहाँ पे हमारे हृदय में जो शुद्ध कृष्ण भावना है उसको श्रवण और कीर्तन के मार्ग से कैसे जागृत किया जा सकता है, इसका वर्णन इस परिच्छेद में पाया जा रहा है। और इसका प्रमाण क्या है, ये श्लोक कौन बताएंगे बिना देखे किताब में? इसका शब्दार्थ करके अर्थ समझाइए। शब्दार्थ नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम क्या है, क्या मतलब नित्य रूप से विद्यमान है? हरेक व्यक्ति के हरेक प्राणी के हृदय में नित्य रूप से कृष्ण प्रेम विद्यमान है। और वो क्या नहीं है? साध्य। साध्य का साध्य यहाँ का मतलब है कि कहीं बाहर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये इसका तात्पर्य है कि ऐसे कृत्रिम रूप से बाहर से ये प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, हृदय में ही है। उसे केवल जागृत करना, उदित करना है। कैसे? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, उसका उदय कराना है हमारे हृदय में। ठीक है, अब विशेष करके श्रवण कीर्तनम की बात करके अब वो नाम संकीर्तन और हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का वर्णन प्रभुपाद जी करने वाले हैं।
शुक्राष्टकम के प्रथम पद में भी भगवान चेतन महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण महाजनम भव महागावाद में निर्वापन श्रेया कैलव चंद्रिका विचरणम विद्या जीवनम आनंदान बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णाविकार साधन सर्वाधनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। संकीर्तन की जय हो, क्योंकि वो वर्षों से एकत्रित हृदय की धूल को स्वच्छ करता है और बद्ध जीवन की बारम्बार जन्म तथा मृत्यु की अग्नि को बुझाता है। ये संकीर्तन आंदोलन समस्त मानवता के लिए मूल वरदान है, क्योंकि ये वरदान रूपी चंद्रमा की किरणों को बिखेरता है। ये दिव्य आनंद के सागर को उमड़ाता है और हमें उस अमृत को चखने के योग्य बनाता है, इसके लिए हम सदैव उत्सुक रहते हैं। महामंत्र का जप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है वो भी पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि शरीरधारी निम्न पशु कीड़े पौधे तथा अन्य जीव योनियों योनियां भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना वायु बनने के योग्य हो जाती है। इसकी व्याख्या उस समय ठाकुर हरदास ने की जब श्री चेतन महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भगवान से मुक्त हो जाते हैं। हरदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिमान है कि यदि कोई जंगल के सुंदर भागों भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावना में प्रवृत्त करते हैं। इसे श्री चेतन महाप्रभु ने स्वयं ही सिद्ध कर दिखाया। जब वे झारखंड के जंगलों से होकर जा रहे थे उस समय सिंह सांप हिरण तथा अन्य निसंदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यक्रमों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन उनके चरण चिन्हों पर चल तो सकते ही हैं। हमें इतनी शक्ति तो नहीं है किसी भी सांप कुत्ते तथा बिल्ली जैसे नए पशुओं को मोहित कर लें या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सकें, लेकिन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके विश्वभर के तमाम लोगों को कृष्ण भावना और आयुक्त बना ही सकते हैं।
तो यहाँ पे पिछले दो परिच्छेदों में, दो या तीन परिच्छेदों में नाम संकीर्तन की महिमा है, और इसका प्रमाण क्या है, सबूत क्या है कि चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के वन में पशुओं को भी नचाया था, कीर्तन कराया था उनसे। और ठाकुर हरिदास ने क्या पूछा था, चैतन्य महाप्रभु ने क्या पूछा था ठाकुर हरिदास से? कैसे उद्धार होगा, और ठाकुर हरिदास ने क्या उत्तर दिया था? इसलिए हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जो हल्के से जप या नाम उच्चारण करता है उसका तो उद्धार होता है, लेकिन नाम संकीर्तन करने से अन्यों का उद्धार भी होता है। यहां तक कि जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे तुम कहते हो हरिदास ठाकुर कि मेरी कृपा से हरिनाम संकीर्तन से सारे प्राणी चले जाएंगे तो ब्रह्मांड खाली हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रह्मांड में कोई रहेगा नहीं, तो हरिदास ठाकुर क्या उत्तर देते हैं?
वही काम करेगा जो जिस पर आपकी कृपा हो।
जो ऐसे ऐसे कई योनि हैं जो अभी अचेतन अवस्था में है, जैसे पत्थर आदि योनियों में, वो सब आ जाएंगे ऊपर, फिर से ब्रह्मांड भर जाएगा, इसलिए उसकी चिंता नहीं करो आप महाप्रभु। और हरिनाम से पशु पक्षी सारे चर अचर प्राणी सब मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, हमने तो नहीं सुना है, हो सकता है, लेकिन अच्छा पता नहीं, हमने अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, हम भले पशुओं को नचा नहीं सके कीर्तन में, लेकिन मनुष्यों को तो कम से कम हरिनाम दे सकते हैं ना। तो फिर अब आगे प्रभुपाद जी बताने वाले हैं कि नाम संकीर्तन की इतनी व्याख्या क्यों की है प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में, इसलिए अब कारण बताएंगे कि नाम संकीर्तन का क्या प्रयोजन यहाँ इस विषय को उठाने के लिए। हाँ पढ़िए।
भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का भक्त उदाहरण है। हजार के सिद्धांत इसी नियम के प्रतिग्रहणार्थ, इसी नियम से प्रतिग्रहणार्थ सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की परिस्थिति को समझने के लिए अपना मस्तिष्क खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गृहम अध्यात्मिक क्षति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है।
तो भगवान ने हरिनाम संकीर्तन की बात क्यों की इस श्लोक में? ददाति और प्रतिग्रहणाति सिद्धांत को प्रकाशित करने के, जो लेते हैं अब नाम संकीर्तन करके हरिनाम को बांट रहे हैं ना, तो अनेक लोग स्वीकार कर रहे हैं और हम भी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो हम लोग सुनते भी तो हैं, हम कीर्तन भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं। ये है ददाति प्रतिगृणाति, अर्थात सबसे श्रेष्ठ उपहार या भेंट जो आप किसी को दे सकते हैं वो क्या है? हरिनाम। सबसे श्रेष्ठ भेंट जो आप स्वीकार कर सकते हैं किसी से वो क्या है? हरिनाम। तो ये है ददाति प्रतिगृणाति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। उसी प्रकार से गुह्यम अख्याति पृच्छति, क्या अर्थ है? कृष्ण भावना से संबंधित प्रश्नों को गुह्य रूप से पूछें। केवल ये नहीं, प्रभु जी अच्छा मैंने 10 लाख रुपए वहां छुपा के रखे हैं, उसका क्या करना चाहिए मुझे? मुझे भगवान के लिए देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए? केवल ये नहीं, कृष्ण भावना के बारे में पूछताछ करना और उत्तर देना, ये गुह्यम अख्याति पृच्छति। और फिर भूमते भोजयते चैव, उसके बारे में अगले परिच्छेद में रूपा जी बतला रहे हैं। हाँ जी पढ़े।
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ के सदस्य हर रविवार को जो अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, तो वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए बुलाते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग विचार प्राप्त करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर बढ़िया प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं।
हाँ, तो गुह्यम आख्याति, ये भूमते भोजयते चैव कैसे होता है? इस कौन में
संध्या फीस जो होती है उसमें सबको बुलाते हैं और फिर कभी कभी जिन जो लोग आते हैं वो भी भक्तों को अपने घर बुलाते हैं
तो प्रसाद
पाते भी हैं,
पाते हैं, खिलाते हैं। ये बहुत लोकप्रिय है इस कौन में, है ना, ये प्रथा भूमते भोजयते चैव। अच्छा आगे बढ़िए।
हाँ। लोगों को चाहिए तथा कथित योगियों ज्ञानियों कर्मियों तथा उपकारी लोगों की संगति त्याग दें, क्योंकि इस संगत से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावना के आंदोलन के भक्तों की संगत करनी होगी, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करना सिखाता है। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। पशु समाज में न तो गिरजाघर है, न मस्जिद या कोई अन्य धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों न हो उसकी कोई न कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगलों के अधिक जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति होती है।
तो पशु और मनुष्य समाज में जैसे पहले भी हम देख चुके हैं अंतर है कि मनुष्य समाज में धर्म होना चाहिए। जिस मनुष्य समाज में धर्म नहीं है वो पशु समाज है। तो ये वृत्ति तो हर समाज में रहती है, यहाँ तक कि जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके समाज में भी कोई न कोई ऐसी एक वृत्ति रहती है। परंतु सच्चा धर्म क्या है? धर्म कब सफल कहा जाता है?
जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होकर ईश्वर प्रेम को रूप धारण कर लेती है तभी वो सार्थक है।
इसको मार्क कर दीजिए, ये महत्वपूर्ण वाक्य है। ये किसी धर्म की परीक्षा है। जैसे आप चावल पका रहे हैं तो चावल पकाते समय आप कुछ देखते हैं कि चावल पका है या नहीं, इसके लिए परीक्षा होती है ना, परीक्षा करके आप देख सकते हैं कि चावल पका है या नहीं। उसी प्रकार से धर्म ये सफल हुआ है कि नहीं है, ये अच्छा धर्म है नहीं है, श्रेष्ठ है नहीं है, इसकी परीक्षा कैसे करेंगे? किस हद तक इस धर्म का पालन करने वाले लोग भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, ये परीक्षा है। किस हद तक इस धर्म का पालन करने वाले लोग भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। ये परीक्षा है। हाँ तो आगे पढ़िए।
जैसा कि श्री भागवत के प्रथम स्कंध 1-2-6 में कहा गया है, सदैव पुंसाम बहु धर्मो ये तो भक्ति भोक्षते आत्मा सुख सिद्ध।
ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हो सके तो आप कंठस्थ कीजिए। इसमें भी भक्ति की परिभाषा मिलती है। हाँ जी पढ़िए।
समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए जिससे आत्मा की पूरी तरह तुष्टि हो सके। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन शांति, अमन चैन, स्थैर्य तथा मनुष्यों एवं राष्ट्र के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए जिससे वे भगवान कृष्ण के लिए अपने सुख प्रेम को विकसित कर सकें।
बहुत अच्छा। तो विश्व शांति का सूत्र यहाँ पर हमें मिल रहा है। भगवद गीता का कौन सा श्लोक है विश्व शांति का सूत्र? हाँ बहुत अच्छा। तो क्या मतलब? बहुत अच्छा। तो इसी बात को यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर विश्व शांति का निर्माण करना है कि सभी को भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बना के चलना चाहिए, सभी को कृष्ण भक्त बनना चाहिए, फिर अवश्य शांति होगी। प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बनाया जिसमें सारी दुनिया रह सकती है। हाँ जी।
इस ओर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कृष्ण भावना में आंदोलन का प्रचार करने के लिए लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन विशेष मायावादियों से नहीं बोले जो ऐसे आस्थिक आंदोलनों का सदैव विरोध करने के लिए कृत संकल्प।
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की चेतावनी क्या है?
भक्तों से, मायावादियों से,
मायावादियों से, नास्तिकों से हम नहीं मिले।
संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद का प्रचार करने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकवादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे क्योंकि ये लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है। नास्तिकों की यही नीति है, सांप को दूध तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होता, अपितु दूध तथा केला खाकर वो और भी विषैला बन जाता है। केवलम विष वर्धनम, यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता ही है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सब के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल खोलने से कोई लाभ नहीं होगा, अतः उनकी संगत से बचना चाहिए और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें न तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए न उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ संपर्क से उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। संगात संजायते कामा।
हाँ ठीक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतनी कड़ी चेतावनी क्यों देते हैं ना कि मायावादियों का संग नहीं करना चाहिए या नास्तिक लोगों का संग नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि व्यक्ति में व्यवधान पड़ जाएगा। ये उदाहरण कौन सा दिया हुआ है? सांप और दूध का। दूध और केले पौष्टिक आहार माने जाते हैं लेकिन एक सांप को खिलाइए तो क्या होता है? उसका जहर, उसका विष बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से ये उदाहरण क्यों दिया है श्री प्रभुपाद ने?
अगर नास्तिकों से मिलेंगे तो उनका
नहीं पढ़िए पढ़िए, लिखा आप ही ने पढ़ा था।
उनकी नास्तिकता आती है मनोवृत्ति से दूषित होते, मतलब हम लोग दूषित हो सकते हैं।
ये 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 उदाहरण, ये उपमा देने का, दृष्टांत देने का कारण क्या है इस संदर्भ में? हाँ, मन की बात प्रकट, उससे क्या होता है? हाँ, इसी प्रकार से जिस प्रकार से केले, केला या दूध, दूध पिलाने से, केला खिलाने से एक सांप का जहर बढ़ जाता है, हमें ही डस देगा वो, उसी प्रकार से एक मायावादी को और नास्तिक को अपने हृदय की बात खुल के बतानी नहीं चाहिए, उसका जहर और भी बढ़ जाएगा और उसका संग हमारे ऊपर और भी बढ़ जाएगा और बुरा प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ेगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहां कहने जा रहे हैं कि ये लोग जो हमेशा कृष्ण भावनामृत आंदोलन को रोकना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में हमें उठना बैठना नहीं चाहिए और विशेष करके हमें अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए।
संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावादी दल ने नास्तिकतावादी दर्शनों का लाभ उठाया। इस तरह से संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए मायावादी वादों का नास्तिकतावादी दर्शनों का लाभ उठाया।
हाँ, उदाहरण दीजिए आप, दीजिए कोई साम्यवाद। साम्यवाद क्या है? नास्तिकवाद है ना। साम्यवाद में
इसके पास एक प्रकार हम लोग चाहते हैं साम्यवाद करना, खुद उसका।
लेकिन साम्यवाद दर्शन में क्या वो भगवान को मानते हैं? नहीं। कार्ल मार्क्स वो प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने ये साम्यवाद दर्शन को लिखा, साम्यवाद दर्शन। कार्ल मार्क्स जर्मन थे, तो स्पष्ट उन्होंने कहा है कि धर्म ये जनसाधारण के लिए अफीम है, गांजा। केवल नशा बढ़ाने के लिए जो जनसाधारण ज्ञानी लोगों को, मासूम लोगों को नशे में डाल के फिर जो शोषण करने के लिए राजाओं को ही अवसर मिल जाता है, धर्म के नाम पर सबका शोषण करते हैं। ये वैसे भगवान है नहीं, और धर्म ये सब बेकार चीजें हैं, केवल अज्ञान है और शोषण के साधन है। तो ऐसे नास्तिकवाद दर्शन को अलग अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं, कोई साम्यवाद कहते हैं, कोई कहते हैं पूंजीवाद, कोई क्यावाद, ये अलग 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 वाद प्रस्तुत करते हैं, लेकिन है ये बस वही उसी प्रकार के। हाँ जी, आगे बढ़िए।
ये इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने देने से दूर रहना चाहिए। श्री चेतन महाप्रभु ने भी सचेत किया है, विषयी अन्य फैले दुष्ट है मन, संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है,
इसलिए हमें बाहर नहीं खाना चाहिए, है ना। बाहर जाते हैं होटलों में इधर उधर, क्योंकि हम क्या ग्रहण करते हैं? हम पकाने वाले की चेतना को ग्रहण करते हैं। जब कोई व्यक्ति भोजन बना रहा होता है तो वो अपनी चेतना को उस भोजन में डाल देता है और फिर वो भोजन पकाता है और उसका सारा भाव जो है, हृदय का भाव उस भोजन में आ जाता है। ये बहुत सूक्ष्म तत्व है। और जब हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसकी चेतना को उस भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। देखिए भगवान ने कैसे ये प्रकृति के नियम बनाए, सूक्ष्म रूप से चेतना का स्थानांतर कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चेतना कैसे जाती है, दृष्टि से जाती है, वचन से जाता है, स्पर्श से जाता है, संग से जाता है, और भोजन से भी जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि भक्तों के हाथ बनाए हुए हम भोजन ग्रहण करें और फिर उसको कृष्ण को अर्पण करें। सबसे आदर्श परिस्थिति यह है कि बीज भक्त बोएं, फसल सिंचाई जो है फसल की वो भक्त करें, फसल भक्त काटें, उसके बाद में अनाज को ले आएं भक्त लोग, भक्त पकाएं, भक्त भगवान को अर्पण करें और फिर भक्त लोग सेवा करें। और ऐसा प्रसाद जब हम सेवन करेंगे तो वो आदर्श परंतु ये आजकल पूरी तरह से संभव सब जगह नहीं है। तो जितना हो सके तो कम से कम ठीक है, हमने अनाज हमने सब्जी मंडी से ले लिया या हमने बाजार से किराने की दुकान से खरीद लिया, तो कम से कम भक्तों के हाथ के बनाया हुआ प्रसाद ही हमें ग्रहण करना चाहिए। फिर भी सरल जीवन ऊंचे विचार के सिद्धांत के फलस्वरूप प्रभुपाद जी चाहते थे कि ऐसे स्वावलंबी हमारे समाज हों जो खेती के ऊपर गोरक्षा के ऊपर निर्भर हैं, जहां भक्त लोग अपनी खुद खेती करेंगे, अनाज उत्पादन करेंगे, सब्जियां उगाएंगे और गाय का दूध लेंगे और हृष्ट पुष्ट रहेंगे, खूब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, सुखी जीवन जिएंगे। तो ये संभव है, परंतु हमने जीवन को इतना कृत्रिम बना दिया है कि अभी हमें लगता है कि यह भी संभव नहीं है।
हाँ, द्रौपदी जी ने कहा है कि संभव नहीं बना, क्योंकि कुछ भक्त पार्वती करते हैं तो जो बोलेंगे द्रौपदी बोल रहे कलयुग में संभव नहीं, तो क्या द्रौपदी क्या भाव है
पूरी तरह से संभव नहीं है जैसे पहले था। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का क्या तात्पर्य यह भी समझना चाहिए। देखिए, जब हम किसी शब्द को समझते नहीं है, उसका गहरा तात्पर्य समझते नहीं है, हम कुछ कह देते हैं। जैसे बाहर के लोग कहते हैं अजी हम भी भक्त हैं, लेकिन भक्ति क्या है स्पष्ट ज्ञान नहीं है। कुछ एक हल्का सा कुछ एक विचार उनके मन में है कि हाँ ऐसे करने से भक्ति कहलाती है, हम भी भक्त हैं। लेकिन आज हम ये व्रत भी रखेंगे, आज मंगलवार हमारा है ये भी हम रखेंगे, कल बुधवार हमारा है उसमें वो व्रत रखेंगे, लेकिन हम भक्त भी हैं। तो उसी प्रकार से कभी कभी भक्तों के मन में भी स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, स्पष्ट समझ नहीं होती सिद्धांत के बारे में। तो कोई एक बात वाक्य कहीं प्रभुपाद जी ने कह दी है तो बस उसको लेकर फिर वो कह देते हैं। तो हमें समझना चाहिए पूरी तरह से, अच्छे उसको पूरा पूरे दृष्टिकोण से समझना चाहिए वर्णाश्रम धर्म है क्या और इस वर्णाश्रम धर्म का संबंध भक्ति से क्या है। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि चैतन्य महाप्रभु ने एहो बाह्य कहा वर्णाश्रम के बारे में। जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा था साध्य और साधन तत्व के बारे में, विशेष करके साध्य सबसे ऊंचा उद्देश्य क्या है, और रामानंद राय ने सबसे पहले कहा था वर्णाश्रमाचार वता पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणम, कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से ये भगवान विष्णु की आराधना होगी। तो एहो बाह्य कहने का तात्पर्य क्या है, श्री प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यदि चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम को बिल्कुल बेकार ही समझा होता तो उन्होंने संन्यास आश्रम क्यों लिया, स्वीकार किया। और संन्यास आश्रम स्वीकार करने के बाद इतने कठोरता से पालन किया नियमों का जितना कि कोई सन्यासी नहीं कर सकता। और संन्यास लेने के पहले भी जब वो गृहस्थ आश्रम में थे तो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का परिपूर्ण भलीभांति पालन किया उन्होंने, अच्छे ढंग से पालन किया। क्यों किया? अगर वर्णाश्रम को ठुकराना चाहते थे, कहना चाहते थे कि ये बेकार है, तो फिर वो कहते हम कृष्ण भक्त हैं, सन्यासी क्या गृहस्थ क्या सब एक ही हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, तो फिर ये सहज ही हो जाता है। प्राकृत सहज लोग में ऐसे पाया जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने किस दृष्टि से यह कहा, यह हमें समझना चाहिए। महाप्रभु कहना चाहते थे कि वर्णाश्रम धर्म अपने आप में एक साध्य नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है। वर्णाश्रम धर्म मात्र एक बुनियाद है, आधार है, जिस पर खड़े होकर, स्थिर होकर हम ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, और वो है कृष्ण प्रेम। तो अगर बुनियाद हमारी ठीक हो, अगर हम स्थिर खड़े हों, तो हम ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन बुनियाद अगर हमारी आधार ही जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल, तो वैसे हमारा आधार ही हिलता हुआ है तो हम लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म का पालन किए बिना हम लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। और जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि जैसे जैसे भक्ति में व्यक्ति बढ़ते जाता है, वैसे वैसे जो वर्णाश्रम के थोड़े नियमों को त्यागते जाता है, त्याग सकता है वो। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कभी कभी वैष्णव उनको त्यागते भी नहीं है, केवल समाज के लिए, समाज में एक अच्छा उदाहरण और उसके स्वयं पालन करते हैं। जैसे जैसे अद्वैताचार्य ने श्राद्ध का अनुष्ठान मनाया, क्या आवश्यकता थी हरिदास ठाकुर को करने के लिए? स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने पिता के श्राद्ध बनाने के लिए गए, चले गए, कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन उन्होंने मनाया। तो वैष्णव भी कभी कभी ऐसे वर्णाश्रम के धर्म के नियमों का पालन करते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर चेतावनी देते हैं कि जब ऐसे कोई श्रेष्ठ वैष्णव करते हैं तो उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो किस दृष्टि से कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, हम वो नहीं जानते। कभी कभी वैष्णव ऐसे समाज के लिए भी कर सकते हैं, परंतु जब वैष्णव ऐसे वर्णाश्रम धर्म के नियमों को स्वीकार करते हैं तो उनकी श्रद्धा ये होती है कि ये केवल समाज के लिए हम कर रहे हैं, ये तत्व ऊंचा तत्व नहीं है, हमारी श्रद्धा इन चीजों में नहीं है, हमारी श्रद्धा कृष्ण में है। तो उन भक्त से आप पूछिए कि वर्णाश्रम धर्म नहीं पालन कर रहे हैं तो ब्रह्मचारी गहरे वस्त्र क्यों पालन कर रहे हैं, गृहस्थों के लिए क्यों नियम है ना। इसलिए थोड़ी बहुत गहराई से हमें इन विषयों का समझना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमें किताबों में बहुत कुछ समझाया है, तो हर एक शब्द के पीछे बहुत गहरा अर्थ होता है। तो वर्णाश्रम धर्म अवश्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, वर्णाश्रम धर्म सदैव हमारे लिए भक्ति के अधीन होना चाहिए, भक्ति के नियंत्रण में होना चाहिए। ऐसे दैवी वर्णाश्रम का पालन हमें करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कई बार, ठीक है मैंने इतने सारे मंदिर खोल दिए, 108 मंदिर खोल दिए, अभी दूध उबालने का समय आ गया। दूध उबालने का समय मतलब कि अभी प्रशिक्षण का समय आ गया, भक्तों को ट्रेनिंग देना चाहिए, अब वर्णाश्रम शुरू करना चाहिए। आप देखो जिनकी जिनकी प्रवृत्ति कैसी है, सब वैष्णव हैं लेकिन सबकी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों के अनुसार उनको प्रशिक्षण दो। किसी की ब्राह्मण की प्रवृत्ति है, किसी को क्षत्रिय की प्रवृत्ति, किसी को वैश्य की प्रवृत्ति, तो वैसे वैसे सोच समझ के ये समाज को स्थापित करो। प्रभुपाद के ऐसे कई आदेश हैं, ठीक है, परंतु ये इस समय विषय से थोड़ा हटकर है। हा? तो हाँ माता जी, प्रश्न ये है कि यहाँ लिखा है कि विषयों के घर में हमें प्रसाद नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी प्रचार के लिए जाते हैं तो क्या करना चाहिए, कभी कभी अभक्तों के घर में जाते हैं यदि वो 16 माला भी कर रहे होते हैं फिर भी देवताओं की उपासना करते हैं। सिद्धांत यह है कि नहीं खाना चाहिए। अब किस हद तक हम इसमें थोड़ी छूट देना चाहते हैं वो बहुत गहराई से परिपक्वता से देखना होगा, लेकिन सुरक्षित रहना ही ये अच्छा सिद्धांत हमारे लिए है। इसके लिए कई चीजें हो सकती हैं। एक तो हम व्यक्ति को साफ साफ कह सकते हैं कि देखिए हम बाहर खाते नहीं हैं, जब तक आप भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेंगे, आपके जीवन में इन सिद्धांतों को उतारेंगे नहीं और आप भगवान को भोग नहीं चढ़ाएंगे घर में, हम नहीं ले सकते, आप बुरा नहीं मानिए। हो सकता है वो लोग माने कि हाँ भाई ये सही बात है, हमको भी होना चाहिए वैष्णव, ये लोग बहुत बढ़िया हैं, ये लोग बिल्कुल अपने नियमों में पक्के हैं, थोड़े लोग मान जाएंगे। हो सकता है थोड़े लोगों को बुरा लगे। अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति को बुरा लगने वाला है तो फिर आप सोचिए, हो सकता है कि अगर लेना ही पड़े वहां तो कोई पके हुए चीजें न लें, केवल फल लें, कुछ ऐसा ले लें, कच्चे आइटम कुछ ले लें। एक आध बार मैंने ऐसे भी कुछ किया है, ऐसे खैर क्लास में तो कहना नहीं चाहिए लेकिन एक आध बार मैंने ऐसे भी कह दिया है कि नहीं पेट खराब है, क्योंकि जहां मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो कह देते हैं अरे कुछ ठीक नहीं। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि ये आदत पड़ जाती है। चलो प्रचार के नाम में हम यहां भी खाएंगे वहां भी खाएंगे और इसमें चेतना में काफी फर्क पड़ जाता है। इसलिए फल खाइए अगर करना ही हो तो। हाँ माता, कोई प्रश्न था? अभी ऐसी सब कोई बहुत एडवांस भक्त हैं और उनके मन में कोई ठीक है, कोई बात नहीं, भक्तों ने किया वो प्रसाद है ना, अब ले सकते हैं। पुराने जमाने में जो ब्राह्मण होते थे ना, वो अपने पत्नी के हाथों से बनाए हुए भोजन भी नहीं खाते थे, अपना ही स्वयं बना के खाते, उनका नियम होता था। आज भी ऐसे थोड़े बहुत ब्राह्मण हैं, बहुत ही कम ऐसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हैं। अगर खाएंगे तो खुद पका के ही खाएंगे और किसी के हाथों से नहीं खाएंगे। ठीक है, हाँ आगे पढ़िए।
संसारी लोगों को का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता, अत्यधिक उन्नति किए बिना कोई भी व्यक्ति कृष्णार्थमृत आंदोलन को अवसर करने में योगदान नहीं दे सकता। अतः सिद्धांत का किसी को मायावादी या नास्तिक सिद्धांत नहीं लेना चाहिए। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्य तक की संगत करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्रिय तत्व के प्रति अत्यधिक विरक्त रहते हैं।
अच्छा, एक बात है कि जब हम किसी भौतिकवादी व्यक्ति की यहां प्रसाद या भोजन लेते हैं, प्रसाद नहीं भोजन लेते हैं, या उससे हम दान स्वीकार करते हैं हमारे लिए, तो उसके कर्म हम लेते हैं और ये भारी पड़ जाता है। अभी ये देखा जाता है कि आजकल जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए लोग हैं, तथाकथित ब्राह्मण हैं, उनके कार्य बड़े जघन्य होते हैं, बड़े अच्छे नहीं होते हैं, बहुत सारे पाप करते हैं, तरह तरह के पाप करते हैं। तो ऐसे क्यों होता है? ब्राह्मण होकर इतने सब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सब जानते हैं, फिर क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि वो लोगों से दक्षिणा लेते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए। अपनी जीविका का साधन क्या है? उनका दक्षिणा लेना, जो ब्राह्मण का कार्य है, ठीक है, दक्षिणा ले लो, परंतु ब्राह्मण के जो कार्य है वो नहीं करते, तपस्या नहीं करते, अपना साधन नहीं करते, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर हो जाते हैं। कि जो दान वो स्वीकार करते हैं उसको पचाने की शक्ति नहीं होती उसके अंदर, इसलिए अपचन हो जाता है। अपचन होने की वजह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण फिर पाप करने लगते हैं। तो हमें अगर दान कोई मिले भी, कभी कभी भक्त ऐसा भी कर लेते हैं, कहीं जाते हैं किसी से, यहां से दान पैसे लेते हैं, दान कोई देता है कि भाई ये आपके लिए दान है, तुरंत कृष्ण को दे देना चाहिए। वैसे जो चलो 500 रुपए मिले, हम 400 रुपए देंगे, 100 रुपए से हम कुछ खा पी लेंगे, तो 100 रुपए उनके जो कर्म है हमको मिलेंगे, मिल रहे हैं, हम उनके कर्म स्वीकार कर रहे हैं। कृष्ण को दीजिए तो उनके कार्य भी शुद्ध हो जाएंगे, आपके लिए भी कोई खतरा नहीं है। जब हम अपने लिए कोई दान स्वीकार करते हैं तो दानी के कर्म हमें स्वीकार करने पड़ते हैं। इसलिए भक्तों को भी इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। अगर हमने केवल कृष्ण के लिए उस दान को स्वीकार किया है, बस लिया और दिया, तो कोई बीच में हमें तकलीफ नहीं होती है। बीच में कुछ रह जाए या अपने आप के लिए हम लें तो तकलीफ हो जाती है। इसलिए विशेष करके भौतिक लोगों से, मायावादी लोगों से, नास्तिक लोगों से आदि, हमें ये प्रेम के 6 लक्षणों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। हाँ जी, सोसाइटी को देने की बात नहीं है क्या? ये कोई कानूनी चीज नहीं है, ये कृष्ण के लिए इस्तेमाल करने की बात है। जो दान हमें मिला है, क्या वास्तव में हम श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब है कि जैसे गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त हुआ है वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अब हम जब इस्कॉन संस्था के अंदर हैं तो प्रभुपाद जी ने जैसे अपेक्षा की थी हमारे लिए वैसे हम कर रहे हैं कि नहीं? जैसे हमने कहा कि दान हमें मिला है, अभी
ये तो व्यवहारिक बात है ना, इसको स्पष्ट करना चाहिए।
देखिए, एक बात तो पहली चीज ये है, कम से कम अपने लिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ये स्पष्ट है ना?
ये तो स्पष्ट है।
अपने लिए लेने से फिर वो कर्म का फल आ जाएगा। अब जहां तक कृष्ण को देने की बात है और फिर उस धन का प्रयोग हमारे लिए करने की बात है, इसमें भिन्न मत है। कोई भक्त कहेंगे कि चलो एक बार कृष्ण को दे दिया तो चाहे वो पापी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो धन शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, तो फिर उस धन का प्रयोग किया जा सकता है। थोड़े भक्त कहते हैं कि ठीक है, कृष्ण को दिया वो भी ठीक है, परंतु उस व्यक्ति ने जब दिया तो उसकी भावना कैसी थी, और अगर उसने वो पैसे कोई गलत ढंग से कमाए, अगर उसकी भावना ठीक नहीं थी, तो क्या वो वास्तव में पूरी तरह से शुद्ध हो गया? जैसे उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान को भोग चढ़ाया है, भगवान ने क्या स्वीकार किया? कैसे समझ सकते हैं भगवान किस आधार पर स्वीकार करते हैं? हमारे भाव, भावग्राही जनार्दन। तो हम जब भोग अर्पण करते हैं भगवान को, जितनी शुद्ध हमारी भावना होगी उतने आनंद से भगवान उस भोग को स्वीकार करेंगे। तो प्रसाद की क्वालिटी में कोई अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। प्रसाद भगवान ने स्वीकार किया, एक तो फॉर्मेलिटी के रूप से स्वीकार कर दिया, दिया तो लिया, लेकिन जब वही भोग कृष्ण भक्त के प्रेम से भरा हुआ हो तो वो कितने आनंद से भगवान स्वीकार करेंगे। तो उसी प्रकार से अगर कोई धन एक पापी आदमी ने दिया है और उस धन की कमाई भी ठीक से नहीं हुई है और वो दे रहा है, तो फिर भी क्या उसका असर, क्योंकि भक्त लोग खा रहे हैं, फिर उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस प्रकल्प के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे हमने कहा दो मत हैं, दो मत हैं इसके बारे में। एक कहते नहीं शुद्ध हो जाएगा, दूसरे कहते नहीं फर्क तो पड़ता है थोड़ा बहुत। नहीं, जब कहते हैं कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तो आम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शिक्षा, ये तुम अर्पण कर दो, मुझे समर्पित कर दो। लेकिन फिर भी हमारा मत ये है कि जहां तक हो सके हमें थोड़ा बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरी जगह एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं, एक दूसरे मंदिर में जहां से हम संबंधित हैं, कोई व्यक्ति आए, कोई सरकार के अफसर थे, वो कस्टम्स डिपार्टमेंट में बहुत बड़े अधिकारी थे, कमिश्नर थे, तो उन्होंने कहा कि कस्टम्स एक्साइज में थे, एक्साइज, तो उन एक्साइज ड्यूटी जो है वो सबसे ज्यादा कहां से मिलती है? हाँ? शराब जो बनाते हैं उनके पास। तो उन्होंने कहा कि ये तो अब इनको मैं बुलाऊंगा, आपकी मीटिंग करूंगा, अब ये इन लोगों के पास बहुत पैसा है तो आप ले लीजिए दान, हम आपको दिला देंगे इनके माध्यम से। तो भक्त लोग दुविधा में थे, भक्त लोग दुविधा में थे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर उन्होंने हमसे पूछा, फिर हमने उत्तर दिया कि नहीं लेना अच्छा है। हमें स्पष्ट पता है कि शराब बेचने से ही उनको धन मिला है और ये धन यहां कृष्ण को दे रहे हैं, भले वो उस कर्म से मुक्त हो जाए लेकिन हमारा क्या होगा, है ना? तो जहां हमें ऐसे स्पष्ट ज्ञान होता है कि भई ये शराब के उसका धन है तो नहीं लेना उचित है, ये हमारा व्यक्तिगत मत है। परंतु कभी कभी ऐसे होता है कि लोग तरह तरह जगह जगह से आते हैं, कुंडी में पैसे देके चले जाते हैं, और पता नहीं चलता कि किसने पैसे डाले, कौन है, उसका क्या व्यापार है, क्या है, और कभी आके हमारे दान कक्ष में भी आके दे जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसका व्यवसाय क्या है, उसने कैसे कमाया है, क्या है, तो हम ले लेते हैं। तो इसलिए हम मध्य पथ में जाते हैं कि जब स्पष्ट जानकारी है कि इसने कोई चोरी करके कुछ किया है, कुछ डकैती से किया है, कुछ शराब से किया है, तो अगर हम स्पष्ट रूप से जानते हैं तो नहीं लें तो ठीक है। परंतु दूसरी अवस्थाओं में जैसे प्रभुपाद ने स्थापित किया, हुंडी है, अब हुंडी है तो ठीक है, पता नहीं, तो भगवान को अर्पण किया जाना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि लाइफ मेंबरशिप कराते समय भी हमें नियमों का पालन करना चाहिए, कभी झूठ बोलकर, ये कहानियां सुनाकर, नहीं करना चाहिए। और लाइफ मेंबर भी अगर हो, हम किसी शराब के दुकान के वाले के पास तो नहीं जा रहे हैं लाइफ मेंबर बनाने के लिए, जाएंगे कोई व्यापारी के पास जो किसका कोई कपड़े का दुकान है, किसी को कुछ है क्या है। अब ठीक है, रहने दीजिए ये विषय, ये ठीक है। सिद्धांत हमें पता होना चाहिए कि जितना हो सके हमें शुद्ध जीवन के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। ये एक सिद्धांत बता दिए, अब कैसे कैसे कहां कहां इसका उपयोग होगा ये हर आदमी को देखना चाहिए। तो सावधानी का पथ ये है कि जितना हो सके हम अपने जीवन को शुद्ध ही रखें, ठीक है ना। हाँ आगे पढ़िए।
निष्कर्ष ये निकला कि हमें सदैव भक्तों की संगत करनी चाहिए, भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पदचिन्हों का अंतरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम भक्ति तथा सुप्त भावनाओं को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो न तो दीक्षित है न महाभागवत है अपितु भक्ति की मध्यकालीन अवस्था में है, उससे आशा की जाती है कि वो भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा आश्रित स्वभाव वालों पर का परित्याग करेगा। इस श्लोक में भगवान से प्रेम में आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की संक्षिप्त विधि का उल्लेख है। तदापि सिद्धांत के अनुसार भागवत से आशा की जाती है कि वो अपनी आय का 50% भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। श्री रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया तो अपने जीवन भर की कमाई का 50% कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 50% अपने संबंधियों में बांट दिया, 25% अपने संबंधियों में बांट दिया और शेष 25% निजी आवश्यकताओं के लिए रख छोड़ा। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए, चाहे जो भी आय हो उसका 50% प्रसन्नता उनके भक्तों के संघर्ष की जानी चाहिए।
हरे कृष्णा।
इससे दरार की मांग पूरी होगी। अग्रिम श्लोक में श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं किस प्रकार के वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए तथा किस प्रकार वैष्णव की सेवा करनी चाहिए।
तो यहाँ इस परिच्छेद में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, निष्कर्ष क्या है? हाँ? निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। यह निष्कर्ष है। और ददाति का क्या अर्थ है? क्या अंत में रूप गोस्वामी को उदाहरण देकर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? एक बार एक भक्त ने पूछा, ये 50% की बात है टैक्स काटने के पहले या टैक्स काटने के बाद? ठीक है, तो ये तीसरे श्लोक की समाप्ति हुई, चौथे श्लोक की समाप्ति हुई। हाँ, कोई प्रश्न है इसके बारे में? टीका टिप्पणी? हाँ तो प्रश्न है?
3
क्योंकि एक बार जब तक वो गृहस्थी में थे उन्होंने इसका पालन किया, ये विशेष करके गृहस्थियों के लिए हैं। एक बार वो वृंदावन में आए फिर तो उनके पास कुछ नहीं था। हाँ, बांटने के लिए गए, विशेष करके बांटने के लिए और अपने सारे पारिवारिक जिम्मेदारियों को समाप्त करने के लिए गए। फिर समाप्त करके फिर वो वापस जब वृंदावन लौटे तो फिर उनके पास कुछ नहीं था। प्रश्न ये है कि कोई आदमी 3,000 रुपए महीने में कमाता है, तो आजकल खर्चे इतने हैं कि आदमी 3,000 में से 1,500 अगर भगवान को ऐसे दान दे दे तो कैसे जीविका का निर्वाह कर पाएगा। दूसरी ओर किसी को 3,00,000 मिल रहे हैं तो वह 3,00,000 के बजाय 1,50,000 के बजाय वो 2,00,000 भी दे सकता है, 2,50,000 भी दे सकता है। हाँ, ये भी हमें देखना है। ऐसे भगवान तो इतने कठोर तो नहीं है, वो देख रहे हैं ना कि यहाँ ये व्यक्ति बड़े कठिनाई से 3,000 में या 2,000 में अपने जीवन को काट रहा है। भावग्राही जनार्दन। तो भगवान, एक भक्त ने कहा था कि भगवान केवल ये नहीं देखते हैं कि आप कितना देते हैं। कितना रखते हैं ये देखते हैं। इसलिए जो गरीब आदमी 1 रुपया देता है, जिसके पास 100 रुपए है वो 1 रुपया देता है, जिसके पास 1,000 रुपए है वो भी 1 रुपया देता है, तो फर्क है ना दोनों के बीच में। ऐसे कहाँ कहा गया? हाँ, कोल्ला विच श्रीधर 50% अपना सब कुछ, 50% गंगा जी की सेवा में लगाते थे। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री उपदेशामृत की जय। गौ प्रेमानंदे।